नियमानुसार पहले 5 मिनट थोड़ा कीर्तन करेंगे, भगवान के नाम का स्मरण करेंगे और उसके पश्चात भी कुछ विषय पर चर्चा करेंगे। सभी भक्तों से विनती है कि कृपा करके बैठ जाइए। मैं आगे आगे बोलूंगा, मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, बोलिए यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, सभी बोलिए यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, सभी बोलिए यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जय राधा वृंदावन बिहारी, राधा वृंदावन बिहारी राधे, जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, वृंदावन धाम की। सब लोग हाथ जोड़ेंगे और कुछ प्रार्थनाएं हम बोलेंगे, उसके पीछे पीछे आप दोहराने का प्रयास कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी सब साथ में बोलेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातहं वंदे श्रीगुरु दीनतारणं श्री चैतन्येश्वरं परमानंदमाधवं। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ गोवर्धन इको विलेज में हार्दिक स्वागत है। आज के रविवार के जो संडे फीस्ट जो कार्यक्रम है उसमें आप सभी का स्वागत है। और आज का जो विषय क्या है, प्रभु जी ने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, सब्जेक्ट क्या है? सक्सेस सूत्र है कि नहीं? बड़े बड़े कॉलेज में यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है विद्यार्थी को सफलता होने के लिए क्या करना चाहिए। एक बिजनेसमैन के लिए सफलता होने के लिए क्या करना चाहिए, एक नौकरी में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, है कि नहीं? वो सब तो आप सभी को पता ही है क्योंकि आप सभी अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही एक्सपर्ट है। तो आज हम कुछ ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो कि सारे सक्सेस, जितने भी सफलता हम हमारे निजी जीवन में हम जो प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, कोई विद्यार्थी उत्तम तरह का विद्यार्थी बनना चाहता है, कोई बिजनेस में सफल करना चाहता है, लेकिन ये जितने भी सफलता जो कार्य है उसके नीचे का आधार क्या होना चाहिए, है कि नहीं? हम देखते हैं कोई एक बिल्डिंग का, कोई एक मान लेते फाउंडेशन, या है कि नहीं, फाउंडेशन स्ट्रांग होता है कि पिलर स्ट्रांग होता है? फाउंडेशन को हमें स्ट्रांग बनाना रहता है कि नहीं? फाउंडेशन यदि स्ट्रांग रहे उसके बाद चाहे आप वो रूम के अंदर लाखों का फर्नीचर डालो तो भी सेफ है, लेकिन फाउंडेशन यदि डगमगा रहा है, आप चाहे कितने भी अच्छे अच्छे फर्नीचर उसमें फिट कर ले, लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा कुछ भूकंप आए तो क्या होगा, पूरा गिर जाएगा। शास्त्र में से कुछ ऐसे रत्न हैं जो हम उसे आज स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। आप सबसे विनती है कि सिर्फ आधा घंटा, अगला आधा घंटा आपके जीवन में एक नया मोड़ लाने वाला है। इसके लिए अगला आधा घंटा अपना मोबाइल फोन साइलेंट रख दीजिए या तो स्विच ऑफ कर लीजिए, जिससे आपको उसमें से कुछ लाभ मिल सके। श्री नारद मुनि, नारद मुनि का नाम सुने हैं? हाँ, क्या करते हो? क्या मैसेंजर, और क्या करते हैं? देखिए, ये जो आज का जो कथा है, हम क्या करेंगे, ये दोनों तरफ से होना पड़ेगा, सिर्फ इधर अकेला बोल के कुछ नहीं होगा, आपको भी उत्तर देना पड़ेगा। नारद मुनि क्या करते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं वो? भारत में लोग बोलते कि वो क्या करते हैं, चुगली लगाते हैं। लेकिन ये शास्त्र के अनुसार ऐसा नहीं है। नारद मुनि किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, हर क्षेत्र में। आप श्रीमद् भागवतम जो है, जिसमें ध्रुव महाराज का चरित्र, प्रहलाद का चरित्र, ऐसे अनेक, परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज, ऐसे अनेक सुंदर सुंदर चरित्र हैं, उसमें सबसे जो मार्गदर्शन करने वाले हैं वो कौन है? श्री नारद मुनि। ध्रुव महाराज को मार्गदर्शन किए, प्रहलाद महाराज को मार्गदर्शन किए। ऐसे ऐसे अनेक महाराजाओं को उन्होंने उन्होंने मार्गदर्शन किए, तो उन्होंने सफलता के सूत्र बताए उन्होंने ध्रुव महाराज को। भागवत में वर्णन आता है, ध्रुव महाराज की कथा सुनी आप सबने? नहीं सुने, कोई भी नहीं सुने, ठीक है। वैसे तो पूरा कथा है, यहाँ पे श्रवण नहीं कर सकते, लेकिन उसमें से जो सबसे जो मुख्य जो शिक्षा है, उसने जो 5 साल के एक बच्चे को उन्होंने दिया, उसको हम आज स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। जब बच्चा गुस्सा होकर जब निकल रहा था ना, उसके उसके पिताश्री ने उनको क्या किया, गोद में बिठाने के लिए स्थान नहीं दिया। उसके पश्चात जब ये वन की तरफ ऐसे स्थान की अपेक्षा कर रहे थे जो उनके परदादा से भी ऊंचा हो, 5 साल का बालक इतना एस्पिरेशन आज के जमाने में कोई कर नहीं सकता। लेकिन हमारे शास्त्र में देखिए कितने कितने उदाहरण हैं। तो नारद मुनि ने वैसे तो बहुत सारे शिक्षाएं दी, लेकिन उसमें से प्रमुख एक सूत्र है जो कि आज के कथा का विषय है। क्या बोलते हो? बोलते गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशत गुणाधमात मैत्रीम समानाद अन्विच्छेन न तापैर अभिभूयते। ये संस्कृत में है, इसका हम श्रवण करेंगे। सबसे पहला बोलते हैं गुणाधिकान मुदम लिप्सेत। एक बार एक कथा आती है, एक 99 मेंबर क्लब सुना है आपने कभी? 99 मेंबर क्लब है ना, लोग क्लब का मेंबरशिप लेते हैं फिटनेस के लिए, एक्सरसाइज के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। तो एक बार एक कथा थी है, देखिए पहले जब राजा महाराजा का समय होता था ना, उसमें राजा प्रजा, राजा यानी कि मुख्य आदमी और प्रजा यानी कि सिटीजन्स। तो पहले जब भी राजा संभालते थे तो कैसे करते थे, क्यों हर दिन अपने प्रजा में विहार करते थे, घूमते थे कि मेरे राज्य में जो प्रजाएं हैं वो कुशल मंगल तो है ना। तो जब भी विहार करते थे, जिसका दुख परिस्थिति रहता था उनको कुछ मदद करते थे, और बाद में फिर अनेक तरह से ऐसे दुखों का निवारण करते थे राजा। आज के राजाओं की तुलना से पहले के राजा तो अच्छे थे। तो जब भी राजा जब विहार करने के लिए निकलते थे रथ में, तो अपने प्रजा के साथ भी निकलते थे, अपने मंत्रियों के साथ। तो हर दिन निकलते थे, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि एक जो परिवार है बहुत बहुत ही गरीब गरीब परिवार है, लेकिन राजा ने आश्चर्यचकित क्या देखा, नोट कीजिए, आश्चर्यचकित राजा ने क्या देखा कि ये जो परिवार है इतना गरीब होने के बाद भी हमेशा प्रसन्न रहता था। वो ये क्या था, राजा के लिए आश्चर्य था, लेकिन आज के डेट में किसी को आप खुश देखते तो भी आपको आश्चर्य लगता है, अरे ये इतना खुश कैसे रह सकता। राजा को भी आश्चर्य होने लगा, उसने मंत्री को पूछा, मंत्री जी ये परिवार के प्रसन्नता का कारण क्या है बताइए। मंत्री साहब बोले, महाराज बहुत सरल है, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ 99 क्लब। बोले ये क्या है, 99 क्लब मेंबर मतलब उसमें क्या होता है? बोले मैं बताता हूं आपको, लेकिन उसके लिए एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। बोले क्या करना है? बोले आपको मुझे 100 गोल्ड कॉइन देना पड़ेगा। क्या गोल्ड कॉइन? जो कि एक एक कॉइन 20 ग्राम 30 ग्राम। हाँ, तो अभी इतना कीमत चुकाना पड़ेगा राजा। बोले ठीक है चलो। तो राज्य में आने के बाद राजा ने क्या कि एक पोटली में बांधे 100 गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन यानी स्वर्ण मोहरे, पोटली में बांधे और मंत्री साहब को दे दिए। बोले ठीक है, इनके प्रसन्नता का क्या बताइए, क्या बताइए, राय रहस्य बताइए। मंत्री साहब ने क्या किया, वो पोटली लाए अपने घर पे और उसमें से एक कॉइन निकाला और क्या किया, अपने जेब में डाला, पोटली को बांधा और वो परिवार को जाके दे दिया, जाके उसके घर के सामने रख दिए दरवाजे पे, गेट पे। प्रातः होने के पश्चात जब वो परिवार का जो मेन आदमी जब दरवाजा खोले, बोले ये क्या, किस ये क्या, तनिक देखे क्या है इसमें, जब वो खोल के देखे क्या निकला, उसमें क्या निकला बताइए? सोने के सिक्के निकले। बोले अरे मेरा तो भाग्य जग गया, सोने के सिक्के निकले। घर पे लेके गए, बोले भाग्यवान इधर आओ, गिनती करना है। गिनती की, 1 2 3 4 5 6 कितने निकले? 99। बोला अरे 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 गलती हो गया क्या? जब भी आप गिनती करते हैं, मान लो 70 75 हो तो आपको लगेगा नहीं कि 100 है, लेकिन 98 99 रहेगा तो आपको क्या लगेगा? कहीं 100 है या 101 है कि नहीं? वो गिनती एक बार, दो बार, तीन बार, चार, 10 बार गिनती की, कितना निकला? 99 है तो 99 ही निकलेगा। पतिदेव ने पोटली बांधी और बोले भाग्यवान इसको कपाट के अंदर रखो, आपने को क्या चाहिए? 1 गोल्ड कॉइन चाहिए। लगे रहो, चलो लगते हैं मेहनत करने। सुबह से लेके शाम तक अगले दिन से मेहनत करना प्रारंभ कर दिए। किसके लिए? 1 गोल्ड कॉइन को हासिल करने के लिए। बच्चों को पीटने लगे, अरे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है। क्यों? जब तुम पढ़ाई करोगे, अच्छे से नौकरी पाओगे, तब कॉइन को हासिल करने में मदद करोगे। पत्नी को पीटने लगे, परिवार में तनावपूर्ण वातावरण होने लगा। 1 महीने के पश्चात जब फिर से राजा अपने मंत्रियों के साथ जब सैर करने लगे अपने राज्य में, राजा आश्चर्यचकित देखने लगे, ये जो परिवार था, ये परिवार बहुत ही तनावपूर्ण टेंशन में था। मंत्री को पूछे, अरे ये क्या हो गया? ये तो चमत्कार हो गया। बोले नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं ना, क्या हो गया इनके जीवन में कि पहले इतना प्रसन्न थे कि अभी इतना तनावपूर्ण जीवन हो गया? बोले राजा साहब, ही हैज नाउ बिकम अ मेंबर ऑफ 99 क्लब। क्या बोले? अब ये 99 क्लब के मेंबरशिप बन गए। अभी इनके जीवन में दुख ही दुख है। अब इस कथा का रहस्य क्या है, इसमें से क्या सिखाते हैं? कपाट के अंदर कितने कॉइन थे? 99। उनको यदि यूज करने यदि जानते तो प्रसन्नता क्या होता? एक स्तर से और कई स्तर तक ऊंचा बढ़ जाता। लेकिन जो मेरे पास नहीं है, मेरे बाजू वाले के पास है, मेरे मित्र के पास है, मेरे सगे संबंधियों के पास है, उसको क्या करना है? मुझे हासिल करना है। नारद मुनि बताते हैं ध्रुव महाराज को, गुणाधिकान मुदम लिप्सेत। जो कोई भी व्यक्ति से देखिए, समाज में हम जिस किसी से भी मिलते हैं, किसी के पास संपत्ति अधिक है, गुण अधिक है कि नहीं? धन संपत्ति अधिक है, लेकिन हम क्या करते हैं? अरे मेरे साथ, मैं तो इसको चड्डी में घूमते हुए देखा था, लेकिन आज देखो, उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे हम जीवन में। क्यों? क्योंकि हृदय में द्वेष है। समझ पा रहे हैं ना आप सभी? द्वेष भावना के वजह से हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। श्रीपाद नारद मुनि बोलते हैं, गुणाधिकान मुदम लिप्सेत। जैसे ही आप किसी व्यक्ति को देखो जिसके पास अधिक गुण है, अधिक संपत्ति है, अधिक चरित्र है, तो उसको क्या करो? मुदम लिप्सेत, स्माइल करो, और हो सके तो उनसे सीखने का प्रयास करो। जैसे क्लास में होता ना, क्लास में मान लो यदि आपका रैंक फर्स्ट ना हो और फर्स्ट रैंक होल्डर, आपको हमेशा लगता है कि अरे यही क्यों अव्वल नंबर आता है, तो हमारे पास चॉइस है। क्या है? एक तो आप उनसे मित्रता करके कुछ सीख लो, उसको यदि 100 गुण आता है तो उसमें से 1 गुण तो आएगा आपके पास, है कि नहीं? समाज में बोलते हैं ना, जैसा करोगे संग क्या, वैसा चढ़ेगा रंग। इसके लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें संग तो मिलता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस संग का लाभ हमें मिल नहीं पाता है, उल्टा उस संग का हमें दुर्गुण मिलता है। कैसे? ईर्ष्या के वजह से। द्वेष बोलते हैं, द्वेष मान लो, ईर्ष्या मान लो, एनवी मान लो। नारद मुनि क्या बोलते हैं? गुणाधिकार मुदम लिप्सित। आप समाज में किसी के पास यदि अधिक गुण देखो तो पहले प्रसन्न हो जाओ, और क्या उनसे कुछ सीखने का प्रयास करो यदि आपके स्कोप में है तो। दूसरा, गुणाधिकान मुदम लिप्सेत। दूसरा क्या है? अनुक्रोशन गुणाधमात। गुणाधिकान हमने है ना, जिसके पास अधिक गुण है उससे क्या करना चाहिए बोलिए? हाँ, क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए, प्रोत्साहन लेना चाहिए, मदद लेना चाहिए। यदि कुछ भी ना हो तो एटलीस्ट स्माइल तो करो कि भगवान ने कुछ तो गुण दिया उनको, नहीं तो द्वेष करोगे क्या होगा? आपके हृदय में एक चिंताग्रस्त भावना भावना अंदर प्रवेश करेगा और क्या बोलेगा? अरे मेरे से नहीं हो रहा है, मैं जॉब नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, मेरे से सफलता नहीं हो पाएगा, तो नेगेटिविटी अंदर घुसेगा। दूसरा क्या बोलते हैं? अनुक्रोशन गुणाधमात। इसके पहले कथा थी, एक बार क्या होता है, ये एक सच्ची घटना है, परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज बताते हैं, जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद है जो यहाँ पर विराजमान है, उनके जो शिष्य परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज, वो बताते थे एक बार वो एक उनके गांव में एक बार वो गांव से जा रहे थे और गांव में क्या हुआ कि पहली बार कोई एक बढ़िया ब्रिज तैयार हुआ नदी के ऊपर, है ना, गांव में कोई बस आता है तो लोग देखने जाते हैं, कोई नया ब्रिज बन गया तो लोग, अरे हमारे गांव में नया ब्रिज बन गया। तो जब महाराज वहां से जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, एक 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति, वैसे 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति नहीं बोलना चाहिए, आजकल बूढ़ा बोलना भी एक अपराध है, इसके लिए बोलते वरिष्ठ वैष्णव। एक बार हम ट्रेन से जा रहे थे, बॉम्बे में कॉलेज में जा रहे थे, बैग लिए हुए थे और ट्रेन में कैसा पूरा सीट कैसा फुल रहता है, चौथा सीट मिल जाए तो भी आप अपने आप को भाग्यवान समझते हैं, तो बैग भी हमारा वजन था और वहाँ पर हमने जस्ट एक व्यक्ति, एक 70 साल के व्यक्ति थे, हमने बोला थोड़ा सा जगह देंगे, ये 10 साल पहले की बात है, चाचा जी थोड़ा जगह देंगे, खड़े हो गए, बोले चाचा कैसे बोले हमको, मैं बोला अभी हम तो पहली बार घर से निकले थे 10वीं के बाद। बोले समझा नहीं, एक्चुअली नहीं समझा नहीं चाचा जी, फिर से चाचा बोले। बाद में फिर एक व्यक्ति ने बोला अरे मतलब समझ गया मुझे तब तक कि अरे हाँ क्या बोला, मैं बोला यस क्षमा कर दीजिए, उनके ऊपर लिखा हुआ था वरिष्ठ वैष्णव, वरिष्ठ नागरिक लिखा रहा था, वैष्णव नहीं लिखा, वैष्णव तो आध्यात्मिक टर्म है, वरिष्ठ नागरिकांसाठी। तो ये 80 साल के बाबा बैठे थे वहां पर ब्रिज की तरफ देख रहे थे, इतना बड़ा पुल बंधा हुआ था, पुल में गाड़ी जा रहे थे, इधर से गाड़ी जा रहे उधर से गाड़ी जा रहे, बैठे 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 घंटों बैठ के ब्रिज को देख रहे। और वहां से जब ये महाराज पास हो रहे थे, बोले ठीक है कोई तो व्यक्ति बैठा है, 2-3 घंटे के बाद जब रिटर्न आए फिर भी ये बाबा बैठे हैं ब्रिज को ही देख रहे हैं, ऐसा क्या है उसमें ब्रिज को देख रहे। तब महाराज जी ने पूछा बाबा ऐसा क्या है कि आप देख रहे हैं यहां पर, बोले हां देख रहा हूं, मेरे मन में एक विचार आ रहा है। बोले क्या विचार आ रहा है? बोले यहां से इतने सारे गाड़ियां आ रहे हैं, यहां से इतने सारे गाड़ियां आ रहे, यदि ये ब्रिज बीच में से टूट जाता ना, सारे गाड़ी बस 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 करके नदी में गिर जाता और वो देखने में बड़ा आनंद आता। अरे बाप रे, बाबा के मृत्यु का टिकट कब आ जाए पता नहीं, लेकिन दूसरों के टिकट कटाने के पीछे पड़े। तो महाराज जी ने बोले अच्छा मान लो इस तरफ से जो गाड़ी आ रहा है, बनारस से जो गाड़ी आ रही है, इसमें से आपके दामाद जी बैठे हैं, क्या बोले, आपके दामाद जी और आपके बेटी वो गाड़ी में बैठे हैं और बीच में से ब्रिज टूट जाए, बोले शुभ 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 शुभ, महाराज जी ऐसे बोल रहे हैं आप? बोला अरे अभी तो 2 सेकंड पहले तो ब्रिज गिरने के बाद बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन अभी अभी क्या हो गया? बोले नहीं 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 ऐसे थोड़ी होता है, मतलब तुम्हारे रिश्ते में जो आता है वो बच जाए और दूसरे मर जाए, तो ऐसे कलयुग का जो जीव है उसके मन में ऐसे विचार रहे। शास्त्र में बताते हैं मनुष्य और पशु, है कि हम सब मनुष्य है। यहां पर संडे फिस्ट में कोई पशु आके बैठता है क्या? क्यों? क्योंकि मनुष्य एक ऐसा जीव है, ऐसा एक शरीर है जिसमें भगवान ने क्या दिया है, विशेष बुद्धि दिया है, जिसके द्वारा हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। और ऐसे बुद्धि का प्रयोग किसी के प्रति द्वेष करने में इसको उसका प्रयोग किया जाए तो फिर पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है जी? नारद मुनि क्या बता रहे हैं, गुणाधिकान मुदम लिप्से, प्रसन्न हो जाओ, आपके सारे जीवन के 50% दुख दूर हो जाएंगे, चिंता ही नहीं होगी किसी को देखने के बाद। हमारे जीवन के 50% जो चिंता होता है वो दूसरे के वजह से होता है, बाजू वाले का घर बन गया, मेरा घर बना नहीं, बाजू वाले का बच्चा अमेरिका चला गया, मेरा बच्चा अभी तक 20,000 के पगार में ही है, बाजू वाले के बेटे को इतना दहेज मिला, मेरे बेटे को मिला ही नहीं। ऐसे ख्यालों में घूमते 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 फिर वो जो बीमारी है ना वो डायबिटीज से भी ज्यादा तकलीफ देती है जी। डायबिटीज तो गोली से आप उसको शांत कर सकते हैं, लेकिन ये बीमारी को गोली से शांत नहीं कर सकते। इसके लिए नारद मुनि क्या बताते, गुणाधिकान मुदाम लिप्से, प्रसन्न हो जाओ, दवाई हो गया। अनुक्रोशन गुणाधमार, किसी के पास यदि कम गुण हो, है ना, हम देखते हैं ना किसी के पास धन कम है, समाज में हम देखते हैं ना धनहीन लोग रहते हैं, किसी के पास धन कम है, संपत्ति कम है, गुण कम है, तो हम क्या करते हैं, अरे ये लोग ऐसे ही रहते, ये लोग, हम उसको निग्लेक्ट करते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको उनको तिरस्कार करते हैं। तिरस्कार नहीं करना चाहिए। क्यों? तिरस्कार करने से क्या होता है, हमको लगता है कि मैं बड़ा हूं और ये छोटा है, और जैसे ही हम विचार करने लगते हैं मैं बड़ा हूं, अहंकार प्रवेश करता है कहां, हृदय में। यदि आप किसी की मदद ना कर सको तो किसी का बुरा भी मत करो, तिरस्कार मत करो। आप मदद नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन घृणा तो मत करो। महाभारत में इसका वर्णन आता है, पांडव कितने थे, दुर्योधन कितने थे, कौरव कितने थे, 100। जीत किसकी हुई, पांच की। दुर्योधन के हृदय में इतना संपत्ति होने के बाद भी, देखिए ये एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है, इतना संपत्ति होने के बाद भी अक्षौहिणी सेना भगवान ने दी उनको, भगवान के प्रति ही द्वेष करना प्रारंभ कर दिए, लेकिन फिर भी भगवान कृपा करने के लिए सबको देते हैं। उन्होंने क्या बोला, लास्ट चांस देता हूं, प्रातः होने के पश्चात अर्जुन को बुलाओ और दुर्योधन को बुलाओ। कृष्ण के कक्ष में कौन आए, अर्जुन जी आए, पहले कहां बैठे, चरणों के पास, और दुर्योधन आने के बाद कहां बैठे, सर के पास। कृष्ण का जब नींद खुला, जब उन्होंने आंखें खोली तो किसका दर्शन हुआ, पहले अर्जुन का दर्शन हुआ, और बाद में उठने के पश्चात जब देखे तो दुर्योधन भी बैठे थे। बोले सबसे पहला मैंने अर्जुन को देखा, तो अर्जुन बोलिए क्या चाहिए, दुर्योधन बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे पहले, मैं फर्स्ट, आई एम फर्स्ट, मैं पहला, ठीक है बोलिए क्या चाहिए। अर्जुन, कृष्ण ने कहा दो वस्तु है मेरे पास बस, एक है मैं, दूसरा मेरी नारायणी सेना। दुर्योधन ने क्या मांगा, भगवान के संपत्ति को मांगा, लेकिन अर्जुन ने क्या मांगा, स्वयं कृष्ण को ही मांग लिए, स्वयं कृष्ण को ही मांग लिए। उस समय पे दुर्योधन का हंसी उड़ा रहा था, अरे ऐसे व्यक्ति को मांगा है जो ना अस्त्र उठाए, ना शस्त्र उठाए, ना कुछ युद्ध करे, उसका क्या फायदा है, एक ग्वाला है। लेकिन वो ग्वाला कैसा ग्वाला है, वो पंद्रहवें अध्याय के पंद्रहवें श्लोक में बताते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं क्या, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। बोले प्रत्येक जीव के हृदय में बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हो हृदय में बैठ के, क्या कर रहे हैं, बोले मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, बुद्धि दे रहे, स्मृति दे रहे, रोज सुबह उठा रहे भैया, हमको लग रहा है हमको अलार्म उठाता है लेकिन वो स्नूज करते करते तो वो तो उठा ही नहीं था। भगवान की सृष्टि का देखिए कैसा है, किसी भी दिन ऐसा हुआ कि सूर्योदय लेट हो गया उनको नींद नहीं खुली, नहीं। तो अर्जुन बुद्धिमानी थे, बोले मुझे भगवान चाहिए, और देखिए उसका रिजल्ट क्या हुआ। भगवान को चुनते समय लोग बोलेंगे अरे ये क्या, ये कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं और माला कर रहे हैं, और ये क्या, ये गोवर्धन इको विलेज में जा रहे हैं, कोई रिसोर्ट में गए होते भैया, कोई लेक में गए होते, मस्त उधर घोड़ा पे बैठते, हाथी पे बैठते, कहां ये गोवर्धन इको विलेज में वृंदावन राधे राधे कर रहे हैं। बोलने के लिए लोग बोलेंगे, दुर्योधन के स्तर के बुद्धि वाले बोलेंगे, लेकिन जब हमारे हृदय में जब दृढ़ता हो उस अर्जुन की तरह कि मुझे किसको चुनना है, किसको चुनना है, कृष्ण को चुनना है, सभी चुनने के लिए रेडी है कृष्ण को, तो हमें कृष्ण को चुनना है। तो यहां पर क्या किया, दुर्योधन ने अर्जुन को देखा कि इसके पास तो कुछ है ही नहीं, यदि उस समय पे यदि वो अपनी बुद्धि लगाया होता तो उसके भी विजय होती थी, क्योंकि भगवान ने लास्ट चांस दिया था। तो गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशन गुणाधमात, जिसके पास हम देखते हैं कम गुण है, कम संपत्ति है, हमें उनको तिरस्कार नहीं करना चाहिए। क्यों, भगवान ने प्रत्येक जीव को एक ऐसा गुण दिया है, और वो बोलता है ना यूनिक क्वालिटी दिया है, एक अनोखा रत्न दिया है, एक अनोखा भेंट दिया है, जो कि उसके पास वो है, उसमें से हम सीखने का प्रयास कर सकते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा, 6 महीने के बच्चे से क्या सीख सकते हैं बताओ, 6 महीने का बच्चा, उसके अंदर क्या गुण है, हमेशा खुश रहता है, और बताइए माताएं बताइए, कभी झूठ नहीं बोलते, और निष्पाप रहता है। आप जब भी अपने अपने घर जाएंगे तो आज से दूसरों के अंदर कौन सा गुण है उसको ढूंढने का प्रयास कीजिए। देखिए गुण को ढूंढने के लिए भी शक्ति चाहिए, बुद्धि चाहिए। गुण है, भंडार भरा है प्रत्येक जीव के अंदर गुण। नवजात शिशु जो अभी जन्म होके बाहर निकला है उसके अंदर भी गुण है। क्या गुण है, सरेंडर है वो, सरेंडर। सरेंडर जब एक बच्चा रहता है, मां का कितना अटेंशन रहता है, 24 घंटा 365 दिन, और वो बच्चा बड़ा होने के बाद जैसे माताओं ने बोला कि वो निष्पाप निकल जाता है, मासूमता निकल जाता है, धीरे 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 फिर पुस्तक अंदर घुसते हैं, फिर किताबें अंदर घुसते हैं, फिर स्कूल के सिलेबस अंदर घुसते हैं, तो सारे जो गुण जो दिखाई देते हैं वो गुण निकलना प्रारंभ होते हैं। इसके लिए बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण है संस्कार देना चाहिए, क्योंकि यही स्तर पर उनको आप संस्कार दे सकते हैं, एक बार बड़ा होने के बाद उनको नहीं दे सकते। इसके लिए एक पुस्तक है भागवतम टेल्स करके, जिसमें बहुत ही सुंदर तरीके से श्रीमान गौरांग दर्शन प्रभु ने इसको बच्चों के लिए किस तरह से आप भागवतम सिखा सकते हैं इसका वर्णन है। नीचे गिफ्ट शॉप में है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट हर स्तर पर है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। अनुक्रोशन क्या था, गुणाधमात, आपसे कम गुण वाले को आप देखेंगे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, उनको मदद करने का प्रयास करेंगे, और मदद ना करने का प्रयास करो तो एटलीस्ट कुछ तो उनके अंदर गुण ढूंढने का प्रयास करेंगे जिससे आप सीख सके। तीसरा बताते हैं अनुक मैत्रिम समानाद अन्विच्छेन, आपके समान स्तर के जो लोग हैं ना, मान लीजिए क्लासमेट हो गया, बैचमेट हो गए, किसी जॉब में आप एक ही पोस्ट पर है, तो क्या करना चाहिए? मैत्री करना चाहिए। अभी आप सबसे एक प्रश्न है, मान लीजिए आप जिमखाना में गए, जिमखाना वर्कआउट है ना, एक्सरसाइज करते, वहां पे आप वर्कआउट करते समय आप अपने बाजू वाले के बिल्ड को देखने लगे और वर्कआउट करने लगे, क्या होगा? क्या होगा? आपका बिल्ड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? क्या होगा? अरे खींचते खींचते गिर ना जाए तुम्हारे ऊपर, उसका ताकत और तुम्हारा प्रयास। इसके लिए जितने भी दफ्तर के एनवायरमेंट है, जितने भी जॉब के जो वातावरण है, 90% ऑफ द जॉब के जितने भी वातावरण है सब तनावपूर्ण वातावरण है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना प्रारंभ करते हैं। अधिक गुण वालों को देखो तो ईर्ष्या होती है, कम गुण वालों को देखो तो घृणा करते हैं, और जब समान स्तर के लोग देखोगे तो मेरे पास क्यों नहीं है ये व्यक्ति, इतना डीमोरलाइज हो जाता है कि कार्य करना ही पूरा ठप हो जाता है। इसके लिए क्या बोलते हैं, उनके साथ क्या करो? मैत्री करो। और जब ये मैत्री करेंगे, बाजू वाला जब वर्कआउट कर रहा है, उसका बॉडी बिल्डिंग बढ़ते जा रहा है, तो उसके साथ मित्रता करो, क्योंकि आपका यदि बिल्ड नहीं बढ़ रहा तो आके क्या करेगा? मदद करेगा। लेकिन यदि आप उसकी तरफ देख रहे, अरे इसका ही बॉडी बिल्डिंग बढ़ रहा है और मेरा नहीं बढ़ रहा, अरे तुम आपके स्वयं के कार्य के ऊपर परिश्रम करो, हाँ, तो आपका भी परिवर्तन आएगा। और जब ये तीन चीज जब कोई करते हैं, सबसे पहला क्या है? गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशन गुणाधमात मैत्रिम समानाद अन्विच्छेन, फिर क्या बोलते हैं नारद मुनि? न तापैर अभिभूयते, ये संसार के जो ताप है ना, ताप यानी कि ईर्ष्या, द्वेष, ये जो दुख, ये सब ताप निकल जाएंगे। और जिस तरह से हमने चर्चा किया था, आप जिस किसी भी क्षेत्र में हो, जब आपके नीचे का फाउंडेशन जब ये होगा, जब स्तंभ जब ये होगा, तब आप कोई भी कार्य करो जीवन में, आपको दुख नहीं होगा। क्योंकि भगवान ने हर एक व्यक्ति को एक ऐसा गुण दिया है, वो गुण के ऊपर कार्य करना प्रारंभ करेंगे। और जब ये गुण के ऊपर जब कार्य करना प्रारंभ करेंगे, तो आप खुद उसका अनुभव करेंगे कि आपके पास समय ही समय होगा, है कि ना? हम बोलते हैं ना, अरे समय नहीं है, अरे समय नहीं है कुछ, थोड़ा सा अध्यात्म में, थोड़ा सत्संग में आइए, समय नहीं है। क्या है? 1.5 घंटा स्टेटस चेक करने में समय है, 2 घंटा न्यूज चैनल देखने में समय है, दूसरे राज्य में इलेक्शन कौन जीता उसको देखने के लिए समय, मेरे राज्य का भी नहीं है, मेरे क्षेत्र का भी नहीं है। हाँ, ऐसे सब कार्य यदि आपको लाभ देते हो, तो आप उसका एक नोट करिए अपने डायरी में। यदि आपको लाभ देता हो तो वो कार्य कंटिन्यू करिए, स्टेटस देखते रहिए, न्यूज देखते रहिए, यदि आपको लाभ देता हो तो कंटिन्यू करिए। यदि लाभ न देता हो और आप उसके ऊपर यदि समय डाल रहे हैं, किसी एक ऐसा स्टॉक मार्केट में जिसमें कुछ लाभ नहीं हो और उसमें पैसा डाल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलिए, डेड इन्वेस्टमेंट बोले या मूर्खता बोलेंगे? अरे इसमें पैसा डाले जा रहा है। और सबसे जो उच्च स्तर का जो धन क्या है? समय। समय ऐसे स्थान पर उसको इन्वेस्ट करो जिससे आपको रिटर्न मिले। और फिर क्या होगा, जब ऐसे व्यर्थ के समय में जब आप नहीं गवाएंगे, तो आपको कुछ तो ऊंचा सोचने के लिए समय मिलेगा। फिर आध्यात्म के स्तर पर सोच सकते हैं, क्योंकि मनुष्य और पशु में तो एक ही अंतर है। क्या है? बोले आहार निद्रा भय मैथुनम च, आहार यानी खाना, भय यानी फियर, निद्रा परिवार का निर्वाण करना, ये तो रास्ते का पशु भी करता है। बोले अंतर क्या है? बोले अंतर है कि ये जो बुद्धि, जो मेमोरी कार्ड दिया है भगवान ने, उसका उपयोग करो। और उसका उपयोग कभी हम करेंगे? जब ये संसार के व्यर्थ के चीजों में समय नहीं गवाएंगे तब। और जब समय जब नहीं गवाएंगे और फाउंडेशन जब स्ट्रांग हो गया, गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशन गुणाधमात मैत्रीम समानाद अनविच्छे न तापै रवि भूयते, जब ये फाउंडेशन हो गया, ये फाउंडेशन के ऊपर क्या करेंगे, फिर बिल्डिंग बांधना प्रारंभ करेंगे। और ऐसा बिल्डिंग बांधेंगे जिसमें आध्यात्म के सर पर, जिस किसी भी घर में हम रहते हैं, जैसे मान लीजिए माताएं घर पे रहते हैं, स्वयं पाक करते हैं, जो कोई भी घर में बनाते हैं उसको क्या कीजिए, सबसे पहला प्रातः होने के पश्चात चाय दूध हो रोटी हो फल हो उसको भगवान को भोग लगाइए। भगवान को भोग लगाते कौन कौन, भगवान को भोग लगाते हैं बोले ये क्या भगवान भगवान करके रखे हैं, ये तो बुढ़ापा होने के बाद किया जाता है भैया, है कि नहीं, क्यों बराबर ना, बोले ऐसा नहीं है, बोले इसका कारण क्या है, जब आप भगवान को भोग लगाएंगे, जब आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, आहार जब भी सत्व गुण पे होगा तो भोग लगाने के पश्चात जब वो रिटर्न आता है तो क्या होता है, प्रसाद। और जब प्रसाद में परिवर्तन होता है, फिर जब वो आहार को जब हम ग्रहण करते हैं तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा क्या होगा, मन। और जब उस स्तर का जब मन होगा फिर बाद में क्या होगा, हम अच्छे विचार कर सकते हैं, द्वेष भावनाएं बंद कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी के अंदर यदि पेट्रोल डालोगे, पेट्रोल के बदले यदि पानी डालते रहोगे, द्वेष भावना ये वो एक दूसरों के प्रति द्वेष, तो क्या होगा, गाड़ी एक दिन खराब हो जाएगा। इसके लिए क्या बोलते कि सही तरह से पेट्रोल डालिए, यानी कि क्या, उसको शुद्ध आहार दीजिए। इसके लिए यहां पर जितना भी पदार्थ आप खाएंगे वो सब भगवान को अर्पण किया हुआ है, हाँ, बिगर कांदा लहसुन का, जब आप उसको अर्पण करेंगे तो क्या होगा, वो आहार शुद्ध हो सत्तो शुद्धि। और जब वो प्रसाद को जब हम ग्रहण करते हैं तब हमारे विचारों में परिवर्तन होता है, और विचारों में जब परिवर्तन होता है तब जाके समाज के लिए हम एक निस्वार्थ भावना से समाज में कार्य कर सकते हैं। और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, मन। अब मन के स्तर पर कैसे कर सकते हैं, जैसे हम बॉडी फिटनेस के लिए जाते हैं ना, बॉडी फिटनेस, वॉकिंग करते हैं, कोई मेहनत करते हैं, कोई कसरत करते हैं, जब तक डॉक्टर ना बोले तब तक एक्सरसाइज करना प्रारंभ नहीं करेंगे। उसी तरह से क्या होता है, बॉडी फिटनेस, उस तरह से माइंड का भी फिटनेस जरूरी है। शरीर के स्तर पर कितना भी फिटनेस कर लो लेकिन मानसिक तनाव हो तो क्या होगा, शरीर को आगे ही जाने नहीं देता। इसके लिए माइंड को यदि फिटनेस रखना हो तो सबसे सरल उपाय दिया गया है शास्त्रों में। क्या उपाय दिया गया है, बोले ये जो कलयुग के जो जीव हैं, यानी कि मॉडर्न, इनकी आयु कितनी है, कितनी है आयु, कितनी है अभी साधारणता मनुष्यों के, 70, 80, 100, 125, कितना, 80, मान लीजिए 100 साल भी जी लिए यार, 100 साल भी जी लिए मान लो, उसको मान लो एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा में से कितना घंटा चला गया सोने में, 8 बचे 16, 16 में से कितना घंटा चला गया जॉब करने में, क्लास जाने में, स्कूल जाने में, 12 घंटा चले गए, कितने बचे, 4, वो 4 घंटे में से कुछ स्नान करने में इत्यादि, घर के कार्य इत्यादि वो करते करते डेढ़ दो घंटे चले गए, बचे 2 घंटे, वो 2 घंटा किस में गया, स्टेटस देखो, मोबाइल देखो, इसकी बात करो, उसकी बात करो, इसकी बहू चली गई, उसका बेटा चला गया, उसका उधर चला गया, उसका इसका एक्सीडेंट हो गया, वो स्टेट में पता है इन्होंने इलेक्शन जीता, ये सब करते करते दिन समाप्त हो गया। इसमें माइंड फिटनेस कैसे रहेगा, सब तो अंदर सब चिंताग्रस्त चीजें ही भरे जा रहे हैं। तो क्या बोलते हैं कि कलयुग में जो है ये जीव का परिस्थिति क्या है, बोलते हैं, बोलते हैं प्रायेण अल्प आयुष सभ्य कलौवस्मिन युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रितः। बोलते हैं ये जो मॉडर्न जमाने के जो जीव है ना, इनका परिस्थिति बहुत गंभीर है। बोले कैसा है? बोले अल्प आयुष, 100 साल ही जीते बस। द्वापर युग में कितने साल जीते थे? 1000, 10 ज्यादा। इसके पहले त्रेता युग में 10,000, सतयुग में 100,000 साल जीते थे भाई। अभी कितना साल? 100 साल। उसमें से भी एक बार 60 हो गया तो क्या? गोली ज्यादा, खाना कम। अरे 60 क्या बोल रहे, अभी तो 40 से ही चालू हो गया है, गोली ज्यादा और खाना कम। बोले इनका क्या हो गया है? इनका हो गया, बोले प्रायेण अल्प आयुष, आयुष क्या हो गया? कम हो गया। बोले बुद्धि? बोले मंद सुमंद मतयो, मंद नहीं कहा, क्या बोले? सुमंद, व्यर्थ की चीजों में ज्यादा समय गवाएंगे। और क्या? व्यर्थ की चीजों में ज्यादा समय गवाने के वजह से मंद भाग्य उपद्रित, बिचारों के भाग्य भी मंद है। आपको नहीं कह रहा हूं, मैं मेरी बात कर रहा हूं, इसीलिए बुरा मत सोचिए। तो क्या होता है कि ऐसे परिस्थिति में, जब एक गंभीर परिस्थिति में आईसीयू में है, हम सब विचार कर सकते आईसीयू में है तो क्या करना चाहिए? जो कोई भी दवाई डॉक्टर देता है उसको गंभीरता पूर्वक लेना क्या है? अनिवार्य है। नहीं तो आईसीयू में रहते रहते कभी भी प्राण जा सकता है। इसके लिए ये जीवों का जब इस तरह से परिस्थिति है करके जब वेदव्यास जी ने जब देखा, सुखदेव गोस्वामी ने जब देखा, कृष्ण भगवान ने जब देखा कि अरे आने वाले कलयुग का ऐसा परिस्थिति है, तो क्या करो? इनको एक लॉटरी टिकट दे दो। क्या दे दो? लॉटरी टिकट दे दो। एक लॉटरी टिकट दे दो। बोले लॉटरी टिकट के क्या दो? बोले इन लोगों का परिस्थिति देख के इनको एक ऐसा टिकट दो, इनको एक ऐसा टिकट दे दो कि इनका क्या हो, कि वो टिकट के आधार पर ऐसा एक बेनिफिट हो, ऐसा एक लाभ हो जो आज तक ना किसी को उसका बेनिफिट मिला है और ना आने वाले अनंत काल के लिए किसी को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट यानी कि क्या? मुनाफा बोलते हैं ना। आप 1 रुपया इन्वेस्ट करो और आपको 1 करोड़ मिले तो क्या होगा? ऐसा इन्वेस्टमेंट कोई यदि अनाउंसमेंट कर रहा है तो बोलेंगे उसका प्रमाण दिखाओ कहां पर है कि नहीं? हम बोलेंगे ना सर्टिफिकेट दिखाओ। अरे 1 रुपया डालने के बाद 1 करोड़ कहां मिलता है भाई? बोले ये जो कलयुग है ना, ये कलयुग के जो जीव हैं, ये बड़े भाग्यवान हैं। और उसमें से भी जो ये भारतवर्ष में जो जन्म लिए हैं, इस भारत भूमि, इस पवित्र भूमि पर जन्म लिए हैं, जो राम और कृष्ण की भूमि है, इस भारत भूमि पर जो जन्म लिए हैं वो बड़े भाग्यवान हैं। बोले सिर्फ इनके लिए, ये जो कलयुग के जीवों के लिए ये लॉटरी टिकट उपलब्ध है। कम समय में ऐसे स्थान पर जाओ जहां गम भी ना हो, बस प्यार ही प्यार मिले। ऐसा कोई स्थान है क्या? ऐसा कोई स्थान है ये संसार में? वो बोलते सिर्फ तो वो गाने के स्तर पर है, लेकिन ऐसा स्थान है गीता के, भगवत गीता यथारूप जशिया ही तशी एज इट इज। नीचे गिफ्ट शॉप में पुस्तक उपलब्ध है, उस पुस्तक में दिया गया 15वें अध्याय में भगवान का स्थान कैसा है, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार मिले। लेकिन उसका क्या है? उसका टिकट लेना पड़ेगा हमको, टिकट लेना पड़ेगा ना। कोई थिएटर में एंट्री मार, हाँ कोई शो में एंट्री जाते हैं, भगवान के धाम में जाना है तो टिकट लेना अनिवार्य है। और वो टिकट क्या है? बोले सबसे सरल और सुगम उपाय है। क्या है? बोलते टिकट जाना है कहां? भगवत धाम। क्योंकि दुखों का निवारण करना ना, हमेशा के लिए सब कुछ छुट्टी, ये जॉब करने से छुट्टी, ये संसार के सारे कष्टों से छुट्टी, कहां पे है? भगवत धाम। किनको किनको भगवत धाम जाना है? नहीं जाना ऐसा लगता किसी को ने? देखिए राधा वृंदावन बिहारी जी वहां से देख रहे हैं किसको किसको भगवत धाम जाना है, जो हाथ ऊपर किए उनको ही लेके जाएंगे वो। चाहिए तो दोनों हाथ भी ऊपर कर सकते, बोले जाना है भगवत धाम और टिकट है हरिनाम। क्या है? टिकट है हरिनाम। यदि भगवत धाम को जाना है तो सिर्फ ये बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही सरल टिकट है। ये टिकट भी नीचे गिफ्ट शॉप है, गिफ्ट शॉप में उपलब्ध है। हाँ, तो आप इसको ले सकते हैं। और इसको कैसे करना है? इसमें टोटल 108 मणि है। इसको फांसी का फंदा करके मत सोचिए। बोले ये क्या है, ये तो इतना सारा मणि है महाराज, इधर दिख रहा है हमको। ये क्या है? फांसी का फंदा नहीं है, ये है माला करने के लिए, हरिनाम का उच्चारण करने के लिए है। क्या है इसमें? एक एक मणि में एक एक मंत्र का उच्चारण करना है। क्या है वो मंत्र? बोलते हैं कि सारे मंत्रों का राजा कहा गया है एक मंत्र को, हाँ, जिसको बोलते हैं महामंत्र। क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए, महामंत्र। जब राजा आते होंगे, लेकिन उसके अंदर जब महाराजा होगा, तो वो महाराजा को यदि आप प्रणाम करके सम्मान देंगे तो सारे राजाएं संतुष्ट हो जाते हैं। उसी तरह संसार में जितने भी मंत्र होंगे, लेकिन ये सारे मंत्रों का राजा जो महामंत्र का जब हम आश्रय लेते हैं, तो क्या होता है? भगवत धाम जाने के लिए टिकट, ये टिकट जब आप दिखाएंगे तो क्या होगा? एंट्री फटाफट मिलेगा। और सबसे सरल है, क्या है? एक एक मणि पर एक एक मंत्र। क्या है ये महामंत्र? टोटल 16 अक्षर है इसमें। कितना है? 16। क्या है? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे। एक एक मणि पर एक एक मंत्र का उच्चारण करना है। और इसको जब आप उच्चारण करेंगे, तो शुरुआत में आपको 8 से 10 मिनट लगेंगे, कभी कभी 12 मिनट लगेंगे, चिंता मत करिए। लेकिन क्या करना है? इसको अभ्यास करना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जब आप अभ्यास करेंगे तो क्या होगा? जिस तरह से बॉडी फिटनेस के लिए हम मेहनत करते हैं, माइंड के फिटनेस के लिए भी मेहनत करना है। हाँ, तो आपके जीवन में भी लाभ होगा, आध्यात्म में भी लाभ होगा, और जीवन में एक एक दूसरे स्तर पर विचार करने के लिए शक्ति प्रदान होगा। हाँ, तो इस तरह से हमने क्या चर्चा किया कि जो सफलता के 3 सूत्र है, क्या है? पहला, जिसके पास अधिक गुण हो क्या करना चाहिए? उनसे सीखना चाहिए, उनसे प्रोत्साहन लेना चाहिए। जिसके पास कम गुण हो उनको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उनको मदद करना चाहिए। और हमारे साथीदार जो, उनसे क्या करना चाहिए? मित्रता करनी चाहिए। इससे क्या होगा? न तापे रवि भूयत, ये जो द्वेष नामक जो बीमारी है, ये हृदय में नहीं जाएगी। उसके पश्चात हमने चर्चा किया, इसको क्या करना चाहिए? घर में प्रतिदिन शाकाहारी भोजन भोग लगाकर घर के परिवार में सबको खिलाना चाहिए। जिससे क्या होगा? आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, मन शुद्ध होगा। और एक बार मन शुद्ध होने के बाद उसको वर्कआउट करिए, उसको फिटनेस के लिए काम लगाइए। और क्या है ये? महामंत्र का उच्चारण। क्या है? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे। और बच्चों को संस्कार देने के लिए इंग्लिश मीडियम के ये बहुत ही सुंदर पुस्तक है, भागवतम टेल्स करके, जो आपको नीचे गिफ्ट शॉप में उपलब्ध है, अमेजॉन, फेसबुक, हर एक वेबसाइट में अवेलेबल है। इसको आप लेके इससे अच्छी शिक्षाएं आप अपने घर परिवार में बच्चों को एक मन के लिए एक आहार दे सकते हैं। शरीर के लिए आहार तो दे ही रहे हैं दिन में 3 टाइम, बट मन के लिए आहार दे सकते हैं। हरे कृष्ण। पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से सुनिए, विशेष सूचना है, इस कथा के दौरान यदि आप में से किसी को यदि कुछ हृदय में ठेस पहुंची हो, तो एक छोटा सा बालक समझकर क्षमा कर दीजिए और यहां से लेके यहां से निकाल दीजिए। और यदि उसमें से कुछ भी आपको यदि लगे कि आपके जीवन में कुछ यदि लाभ कर सके, तो इसका श्रेय यहां पर जो बैठे हैं इस्कॉन के संस्थापक आचार्य और उनके जो वरिष्ठ अनुयायी, उनके ऊपर जाता है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी हमें सिखाए हैं उसको हम हमारे जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। और आप सभी हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे लिए प्रार्थना करिए, ताकि हम भी इन शिक्षाओं को जो पुस्तक में दिए गए इसका अपने जीवन में आचरण कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान आनंद प्रेम प्रभु। प्रभु जी का धन्यवाद व्यक्त करेंगे पारंपरिक रूप से 3 बार हरि बोल बोलते हुए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अभी हम सभी भक्तों से अनुरोध करते हैं कि अभी आरती होगा, श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी का महाआरती होगा। हर रविवार को सुबह 10:30 से 12:30 इस समय में हम रविवारीय सत्संग कार्यक्रम संडे फिस्ट मनाते हैं। तो हम सबको पुनः एक बार आमंत्रित करते हैं, आज की तरह हर रविवार को आप आइए और इस सत्संग कार्यक्रम का लाभ उठाइए। संडे फिस्ट कार्यक्रम में सुबह 10:30 से 11 बजे तक कीर्तन होता है, 11 से 12 बजे तक प्रवचन होता है और 12 से 12:30 बजे तक श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी का महाआरती होता है। इवनिंग शाम में भी बहुत से अच्छे से कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि यमुना आरती होती है, गोवर्धन पूजा होती है।